Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mahapurushon ke pavan charno mein naman karte huye, Shobhava Martesya Yadant Kaitak सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाह तव नृत्यगीते। कठोपनिषद के प्रथम मल्लिका 26वां श्लोक है। बालक नचिकेता जब उन्हें मांगने का प्रसंग आया तब वैराग्यपूर्ण वचन कह रहे हैं। मांगना एक अभिव्यक्ति है अपने भीतर की आसक्ति की आवश्यकताओं की। बिना मांगे बिना याचना किए आसक्ति की पूर्ति संभव नहीं है। देना ईश्वर का स्वभाव है और मांगना जीव का स्वभाव है। परांच खाने वितरणित स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। श्रुति कहती है हमारे पास इंद्रियां हैं और इंद्रियां हमेशा मांगती रहती हैं। याचना इंद्रियों का स्वभाव है और उसके मूल हैं मन की आसक्ति। मांगने का भाव मन में होता है उसको हम आसक्ति कहते हैं। लेकिन मन कभी मांगता नहीं है, वो अपने इंद्रियों के द्वारा मंगवा लेता है। वाणी मांगती है, वाणी से हम याचना करते हैं, बोलते हैं हमको ये चाहिए। लेकिन क्या सचमुच उस कर्मेंद्रियों को कुछ चाहिए क्या? वाणी बोलती है मुझे चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, लेकिन बोलने वाली वाणी खाती है क्या? वहां इंद्रियों के द्वारा याचना है, पैरों के द्वारा चलना है, हाथों के द्वारा लेना है, आंखों के द्वारा देखना है, कानों के द्वारा सुनना है। ये मन अपनी वासना को अपनी मांग को इंद्रियों के ऊपर आरोपित कर देता है। सबसे पहले आसक्ति हमारे मन में उठती है और फिर वो आसक्ति इंद्रियों पर प्रकट हो जाती है। पहले मन में और फिर तन पर, फिर इंद्रियों में। और इस याचना से कोई अछूता नहीं है। हर आदमी कुछ ना कुछ याचना करता है, आयोजन करता है, पाने के लिए परिश्रम करता है, बहुत कुछ करता है आदमी पाने के लिए। सब कुछ जो भी दुनिया में हिंसाचार भ्रष्टाचार होता है वो अपनी वासना पूर्ति के लिए तो है। लेकिन बालक नचिकेता का इतना उच्च जीवन है कि सहज आए हुए जो भोग हैं, भोग्य पदार्थ हैं, वासना पूर्ति में जो सहयोग कर सकते हैं, उन सारे पदार्थों को वो ठुकरा रहे हैं। और यही बालक नचिकेता की सबसे बड़ी विशेषता है। और ये उनका जो वैराग्य है ये सामान्य वैराग्य नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं श्रद्धा से भक्ति पुष्ट होती है और वैराग्य से ज्ञान पुष्ट होता है, ध्यान से योग पुष्ट होता है, सदाचार से धर्म पुष्ट होता है। हमारे जीवन में श्रद्धा हो प्रभु के प्रति, समर्पण हो तो भक्ति पुष्ट होती है और ध्यान करेंगे तो योग पुष्ट होता है। बिना ध्यान योग साधना संभव नहीं है। और जिसको आप धर्म कहते हैं वो सदाचार के बिना संभव नहीं है। हमारे जीवन में आचरण न हो, सत्य का आचरण न हो और हम धार्मिक बने ये संभव नहीं है। और वैराग्य से ज्ञान पुष्ट होता है। आप जितना विरक्त होंगे, इंद्रियों से निरासक्त होंगे, संयम में होंगे, उतना ही ज्ञान परिपुष्ट होगा। और बात भी सही है, आसक्ति हमारे मन को विचलित कर देती है। आप हमेशा याद रखिएंगे, आसक्ति जहां भी मन में उठती है ना, सबसे पहला आसक्ति का कार्य है हमारे मन में विक्षेप पैदा करना। सबसे पहले वो हमारे मन को विक्षिप्त कर देती है, और वो विक्षिप्तता फिर हमारे इंद्रियों में, हमारे आचरण में, हमारे जीवन में आ जाती है। ये हमारे जीवन में जो आसक्तियां हैं ना, ये राग हैं, द्वेष हैं, प्रतिशोध हैं, जलन हैं, घृणा हैं, ईर्ष्या है, ये सारे आसक्ति के ही रूपांतरण हैं। आपको कभी आसक्ति नहीं दिखती है, आसक्ति आपको दिखती नहीं है। आपको राग दिखता है, आपको द्वेष दिखता है, जलन दिखती है, घृणा दिखती है, द्वेष दिखता है, प्रतिशोध की भावनाएं दिखती हैं। अब उन सबका जो मूल है ना, वो आसक्ति है। और वो आसक्ति इंद्रियों में आ सकती है, तन में आ सकती है, और ये सब बाय प्रोडक्ट है, समझ लीजिए आप। हमारी आसक्ति है इस तन के साथ, आसक्ति है इस तन के साथ, और ये आसक्ति अनेकों आसक्तियों को पैदा करती है। हमको धन चाहिए, धनासक्ति शरीर के कारण पैदा होती है। बच्चों के प्रति आसक्ति इसी तन के कारण होती है। हम शोध प्रतिशोध जलन घृणा में, इसका सारा मूल इस तन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आसक्ति जब हमारे मन में आती है तो हमारे मन को विक्षिप्त कर देती है, और उसके बाद फिर आचरण में आ जाती है। तो आपकी जो ज्ञान की जो साधना है, फिर वो शिथिल हो जाती है। और तन के प्रति वैराग्य है, कितना वैराग्य। परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जी को किसी ने बोला कि महाराज, अमुक आदमी आपको गाली दे रहा है। बाबा ने कहा, देता होगा तन को? बोले, हम भी देते हैं प्रतिदिन, दुखालयम अशाश्वतम। बोलते कि इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है क्या? इस शरीर के लिए हम क्या बोलते हैं, ये तो बड़ा दुखालय है, अशाश्वत है, मरने वाला, मिटने वाला। ये बोले, हम तन को गाली तो देते हैं, और उसने भी दिया तो बोले क्या बड़ी बात है। अब कितना बड़ा वैराग्य है, आपको यदि कोई बोल दे तो आपके तो कान खड़े रहते हैं कि हमारे लिए कोई अच्छा बोल रहा है कि नहीं, कोई बुरा तो नहीं बोल रहा है। आपके लिए कोई खबर दे कि अमुक आदमी आपको गाली दे रहा था, तो आप क्या सोचेंगे? आप उस समय प्रतिशोध में आएंगे, अच्छा हम देख लेंगे। आप कुछ बोले भी नहीं, लेकिन आप अपने अंदर मन के पुस्तक पर, नोटबुक पर आप उसको लिख देंगे, आप लाल कलम से लगा देंगे लाल को। और वो क्या कह रहे महापुरुष, वो कहते कि हम तो देते हैं इस तन को गाली तो बहुत देते हैं, आत्मा को तो गाली दिया ना जा सकता है। मां आनंदमयी को किसी ने बोला कि मां, कोई आपको गाली दे रहा था, ऐसा ऐसा बोल रहा था। मां ने कहा कि वो अपने को ही दे रहा है। बोले, आत्मा को छोड़ के और दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। तो नारायण, ये जो आत्मभाव है, ये वैराग्य के बिना संभव नहीं है। जितनी हमारे तन में आसक्ति होगी, उतना ही ज्यादा हम तन के आसपास होंगे, उतना ही तन आपको सत्य मालूम पड़ेगा। वैराग्य में तन असत मालूम पड़ता है, और आसक्ति में तन सत्य मालूम पड़ता है। जहां पर भी आसक्ति होती है ना, वो चीज सत्य मालूम पड़ती है। वस्तु सत्य होने से सत्य नहीं मालूम पड़ती है, वस्तु के प्रति आसक्ति होने के कारण वस्तु सत्य मालूम पड़ती है। एक छोटा सा बच्चा है और वो खिलौने के साथ खेलता है, आपकी दृष्टि से खिलौना सत्य नहीं है। आपके दृष्टि में खिलौना खिलौना है, खिलौने का ही अर्थ होता है जो सत्य नहीं है, खिलौना है। लेकिन बच्चे की दृष्टि से आप देखेंगे, खिलौना सत्य है, आसक्ति है वहां। और कितनी सत्य है, आपकी बड़ी 50 लाख की गाड़ी गैरेज में खड़ी है, वो उस बच्चे के लिए नकली है। आप उस बच्चे को बोलो कि उसके साथ खेलो, वो गाड़ी सही बोलेगा, नहीं ये मेरी गाड़ी है। और आपके सामने आएगा गाड़ी चलाते हुए, आपने कभी देखा होगा, वो गाड़ी चलाता हुआ आएगा, बोलेगा दादाजी हटो हटो हटो, गाड़ी आ रही हटो, और आप नहीं हटेंगे तो उसको लेकर क्यों नहीं हट रहे, हमारी गाड़ी आ रही, एक्सीडेंट हो जाएगा। इतना उसके मन में गहरा भाव, कितनी सत्यत्व बुद्धि, और वो थोड़ा सा टायर उसका इधर उधर हो जाए, स्टेयरिंग टूट जाए तो रोना शुरू कर देता है। वो तो आपसे भी ज्यादा सत्य बुद्धि है वहां, आपकी सत्य गाड़ी में जितनी सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी उतनी उससे भी ज्यादा बच्चे की अपने खिलौने के गाड़ी के प्रति सत्यत्व बुद्धि है और रोना शुरू कर देता है वो। तो वहां सत्य होने से रो रहा है कि आसक्ति होने से रो रहा है? वहां आसक्ति है, और जहां पर भी आसक्ति होती है वो वस्तु सत्य मालूम पड़ती है, ये आसक्ति की विशेषता है। कहीं पर भी हमारी आसक्ति हो ना तो वो सत्य मालूम पड़ेगा, आसक्ति ना हो तो सत्य भी सत्य मालूम नहीं पड़ता यदि वहां आसक्ति ना हो, आप ध्यान दें। और जहां असत्य भी हो और हमारी आसक्ति हो तो वो सत्य मालूम पड़ता है, आसक्ति का चमत्कार है। परमात्मा भी हमारे सामने हो और उनके प्रति हमारे मन में भक्ति न हो, वो भी हमें सत्य मालूम नहीं पड़ेगा। आदमी सोचेगा क्या है बकवास हो, क्या होता है भजन करने से, क्या होता है पूजा करने से, क्योंकि वहां पर भक्ति नहीं है। और भक्ति भी एक आसक्ति का ही रूप है, भक्ति भी एक आसक्ति का ही रूप है। परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति जो आसक्ति है ना, उसी को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा भी एक आसक्ति का ही रूप है, अपने गुरु के प्रति, संतों के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति जो आसक्ति है ना, उसी को तो श्रद्धा बोलते हैं। और जहां पर भी आसक्ति होती है नारायण, वो सत्य वस्तु मालूम पड़ती है, और सत्य के प्रति फिर हम आकर्षित होते हैं। हमारा जो मूल स्वभाव है ना, वो सत्य के प्रति आकर्षित होने का स्वभाव है। आप सुनते हैं ना, आप ब्रह्म हैं, तो आप ब्रह्म हैं, इसमें आपका लक्षण क्या है? यही तो है, सत्य के प्रति हम आकर्षित होते हैं। भले ही आसक्ति जन्य सत्य हो, लेकिन आदमी सत्य समझ के आकर्षित होता है। और ये सत्य के प्रति जो आकर्षण है ना, यही हमारे स्वभावगत सत्य होने का भाव है। हमारा स्वभाव सत्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सत्य के प्रति आकर्षित होता है, प्रत्येक व्यक्ति सत्य को चाहता है। आप कभी असत्य को नहीं चाहेंगे, आप असत्य में प्रवेश करते हैं सत्य समझ के कि असत्य समझ के। हम झूठ भी बोलते हैं ना, तो झूठ बोलना भी हमको सत्य मालूम पड़ता है। आप कभी ध्यान देना, आप झूठ भी बोलते तो आपको मालूम पड़ता है कि ये सत्य है, इससे अपने को कुछ मिलने वाला है। इसलिए सत्य के बिना प्रवृत्ति संभव नहीं, और सत्यत्व बुद्धि नारायण ये हमारे आसक्ति से जन्य है, आसक्ति से जन्य है। और जहां पर वैराग्य हो, वहां जैसे आप माता पिता के रोल में हैं, आपका वैराग्य है, आप खिलौने कितने भी सुंदर क्यों ना हो, बच्चे के लिए सत्य है, आपके लिए सत्य नहीं है। इसलिए वहां बच्चा रोता है, खिलौना टूटने से रोता है, उसका पैसा नहीं गया है, पैसा पिता का लगा है, लेकिन पिता नहीं रोता है, क्योंकि पिता को मालूम है कि असत्य है और बच्चे को मालूम है ये सत्य है, इसलिए वहां रोना है। आज बालक नचिकेता के जीवन में आसक्ति ही नहीं है, ये सच्चा वैराग्य है। भगवान शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है, उसमें 100 श्लोक हैं, उसमें दो प्रकार का वैराग्य बताया है, एक नैर्वेद्य वैराग्य और दूसरा ज्ञान गर्भ वैराग्य। एक नैर्वेद्य का अर्थ होता है जो परिस्थिति जन्य, परिस्थिति विपरीत बनी और वैराग्य हुआ, ये परिस्थिति जन्य वैराग्य, नैर्वेद्य वैराग्य, और इसका कोई भरोसा नहीं। परिस्थिति बनी, वैराग्य बना, और परिस्थिति जब सामान्य हो गई तो अपने आप फिर वो वैराग्य आसक्ति में बदल जाता है। जैसे भोजन के बाद भोजन से वैराग्य है, भोजन के बाद भोजन से वैराग्य होता है। आपको कितना भी अच्छा भोजन लगे, आपका पेट भर गया, भोजन के प्रति वैराग्य हो जाता है, आप बोलेंगे बस भैया बहुत हो गया। भोजन के बाद देने की भावना जगती है, भोजन के बाद देने की भावना, आप पेट भर गया, आप चलो दे दो, अब कोई जरूरत नहीं है। और आपने भोजन नहीं किया हो तो आप बोलेंगे रुको रुको, हमने भोजन नहीं किया है, अभी उससे वैराग्य, भोजन देने के लिए वैराग्य चाहिए। और एक बड़ी मजेदार बात, ये बात मुझे हमेशा याद आती है और मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं, जैसे पंगत लगी हुई हो भोजन की, और आप भूखे हैं और 50 लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं और सामने वाला पूड़ी परोस रहा है, तो आपको अपने थाली की पूड़ी अच्छी लगती है कि दूसरे की थाली का? आप बहुत ध्यान दें कि सुनना इस बात को। उस समय आपको लगता है कि मेरे थाली में जो परोसी जाए वो थोड़ी कच्ची है, वो उतनी अच्छी नहीं। आप देखते हैं कि उधर वो जो परोस रहा है ना, वो फूली हुई बहुत सुंदर पूड़ी है और वो इधर आ जाए तो अच्छा है, इधर आ जाए तो अच्छा है, और आपका पेट भर जाता है तो फिर बात खत्म हो जाती है। आदमी पत्तलों के लिए झगड़ा करता है, दोनों के लिए झगड़ा करता है, बहुत बड़ा बड़ा से बड़ा आदमी भी बोले मेरे पत्तल दो, हम बैठने के लिए झगड़ा करता है। क्यों? या उसको भूख है। और जैसे भोजन पूरा हो जा होता है तो उसके बाद फिर वो पता नहीं थाली कहां जाती है, वो दोने कहां जाते हैं, उस जगह पर बैठने का आग्रह कहां जाता है, और वो इतना अच्छा भोजन जो अभी आप मांग रहे थे, झगड़ा भी कर रहे थे कि और डालो, और अब वो थाली में रह जाता है, वैराग्य हो गया। और ये वैराग्य नारायण हमारे जीवन में हमेशा आता रहता है, परिस्थिति जन्य वैराग्य ये हमेशा हमारे जीवन में आता ही रहता है। कभी कभी ऐसा वैराग्य हो जाता है, लगता है कि सब कुछ छोड़ देंगे आप और हम पूर्ण भगवान का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, परिस्थिति से वैराग्य। लेकिन ये परिस्थिति से वैराग्य भी श्रेष्ठ है, आप ध्यान दें। परिस्थिति जन्य वैराग्य भी कई बार वास्तविक वैराग्य में बदल जाता है। तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य था, वो परिस्थिति जन्य था। पत्नी ने बोला एक वाक्य और बड़ा मजेदार वाक्य जो अक्सर हम अपने पत्नियों से सुनते रहते हैं, इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें सुनते हैं, नहीं सुनते हैं क्या? उन्होंने क्या बोला क्या था? उन्होंने यही तो बोला था, आप जितना मेरे से प्रेम करते हो उतना प्रेम यदि राम से करते, भगवान से करते तो भगवान मिल जाते हैं, इतना ही तो बोला था। कोई बहुत खतरनाक गाली नहीं थी, एक बहुत सामान्य विवेक का शब्द था, वो बड़ा समझदारी भरा शब्द। लेकिन क्या हुआ, उनको खटक गई बात, तुलसीदास जी को लग गई, वो छोटी सी बात लग गई, परिस्थिति जन्य था, वैराग्य हुआ। वो सोचने लगे बात तो सही है, जिसके लिए प्रेम में मैं यहां आया और वो सामने वाला आदमी मेरे प्रेम का स्वागत नहीं कर रहा है, और वो कहता है कि इतना प्रेम यदि राम से करते तो आपको राम मिल जाते हैं, सामान्य शब्द, और वो उनके हृदय में लग गया। और ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि अब मैं राम से प्रेम करके दिखाऊंगा। पहले थोड़ा गुस्सा भी रहा होगा क्या, तुलसीदास जी को थोड़ा गुस्सा भी रहा होगा, उन्होंने बोला अब मैं तुमको दिखा देता हूं राम से ही प्रेम करूं। और उनको ये भी उनको लगा होगा कि मुझे पत्नी रोकेगी कि तुम मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और जब नहीं रोका तो वो वास्तविक प्रेम वैराग्य में बदल गया। अच्छा, रोक भी नहीं रहे। आदमी कई बार बोलता है इसलिए कि सामने वाला रोक दे, आदमी कई बार इसलिए भी बोलता है कि सामने वाला रोकेगा। इसलिए अक्सर आप बोलते हो कि नहीं, यदि ज्यादा तंग करोगे तो वृंदावन चले जाएंगे, ज्यादा तंग करेंगे तो हरिद्वार चले जाएंगे, और आपके मन में यह भी भाव होता है कि हम जाएंगे तो ये लोग रोकेंगे, और यदि ना नहीं रोके तो आप दुखी हो जाओगे, और रोकेंगे तो ओहो प्रसन्न हो जाओ। आपको मालूम है कि रोकने के लिए ही बोला गया। तुलसीदास जी महाराज ने बोला होगा, अंदर सोचा होगा कि जरूर रोकेगी, लेकिन रोका नहीं। और जब नहीं रोका नारायण तो वो भाव जो है ना गहरा हो गया, और वो समझ गए कोई किसी का नहीं, इसको हमारी जरूरत ही नहीं है, चलो अब भगवान का सचमुच भजन करते हैं। परिस्थिति जन्य वैराग्य वास्तविक वैराग्य में बदल गया, इसलिए भगवान बोलते दुख दोषानुदर्शनम, दुख से भी वैराग्य होता है, ये परिस्थिति जन्य वैराग्य। दोषानुदर्शनम, दोष दर्शन से भी वैराग्य, ये विवेक जन्य वैराग्य, ये दुख से वैराग्य, परिस्थिति जन्य वैराग्य। और दोष देखकर विचार पूर्वक जो वैराग्य है ना, ये विवेक जन्य वैराग्य। इसलिए कई बार भर्तृहरि के जीवन में उदाहरण है, पत्नी ने धोखा दिया और वैराग्य हुआ, परिस्थिति जन्य वैराग्य, लेकिन वो वास्तविक वैराग्य में बदल गया। उसका कारण है कि उनके मन के भीतर वो कुछ संस्कार, जैसे आपने उदाहरण लोहा गर्म हो ना और चोट पड़े तो उसको हम आकार दे सकते हैं, और गर्म ना हो आप कितना भी पीटते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोहा टस से मस नहीं होता है गर्म ना हो, और छेनी हथौड़े से कितना भी पीटे उसमें आकार आने वाला नहीं है, लेकिन गर्म हो तो ऐसे ही है। हमारे अंतकरण में अनेकों जन्मों के संस्कार हैं, अनेकों जन्मों के शुभ कर्म है, और वो जब प्रकट होते हैं किसी विशेष कारणवशात, और उस समय नारायण वो हमारे जीवन का आचरण बन जाते हैं। फिर तुलसीदास जी महाराज जी के जीवन में भी ऐसे ही हुआ, भर्तृहरि के जीवन में भी ऐसे ही हुआ, वो क्षण आया और वो पत्नी के वाक्य और वो घटना उनके जीवन में ऐसी चोट लगी, वैराग्य हुआ और वो भर्तृहरि बने, राजा थे, और ऐसी चोट पड़ी और बने वो ऋषि भर्तृहरि। आप उनकी ग्रंथों को पढ़ना, वाक्य पढ़िए उनका, वैराग्य शतक, नीति शतक, क्या उनका, आप ग्रंथों को देखना, आप पढ़ना। भर्तृहरि ने वाक्य पद्यम लिखा, और वाक्य पद्यम किसमें लिखा, ये व्याकरण का ग्रंथ है, और संपूर्ण व्याकरण में उन्होंने वेदांत डाल दिया। जितनी आपकी वेदांत की प्रक्रिया है व्याकरण की दृष्टि से घटा दिया स्फोटवाद में। तो नारायण यही तो वैराग्य है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये परिस्थितिजन्य जो वैराग्य है वो नैर्वेद्य वैराग्य है, और अपने आप विवेक जगा, कई बार जगता है बिना परिस्थिति भी, अपने आप विवेक जगता है, बैठे बैठे जगता है। आपने सुना होगा ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम के प्रतिष्ठाता स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज मलेशिया में डॉक्टर थे, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही थी, और उनके मन में एक बात जगी कि बैठे बैठे प्रतिदिन हम क्या करते हैं, सुबह से शाम तक वहीं, सुबह से शाम तक वहीं करते हैं। आप नोटबुक रखना और लिखना शुरू कर देना डायरी, आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं। सुबह उठे, बाथरूम गए, नहाए धोए, चाय पिया, ऑफिस चले गए, घर आए, फिर भोजन किया, वही रूटीन में रूटीन, और क्या होता है। उन्होंने सोचा कि क्या यही जीवन है, सुबह से शाम तक वही क्रियाएं दोहरा रहे हैं, वही क्रियाएं, पिष्ट पेशन शास्त्र ने कहा, हम पिष्ट पेशन कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को देख रहे हैं संसार में जो अनंत जन्मों से देख रहे हैं, जो पशुवादी योनियों में भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, कब तक करेंगे। वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ करके वो ऋषिकेश आ गए, और वहां ऋषिकेश में आते ध्यान साधना करते व्यक्तिगत रूप से, और उसके बाद फिर वो गरीब लोगों के लिए दवाएं दिया करते थे, गरीब लोगों के लिए दवाएं दिया करते। ये साधु का जो स्वभाव है ना वो आप जीवन में उतरता है। वो देखते थे, किसी साधु को देखते थे बीमार है, वो स्वयं उठा के ले जाते थे, अपने कुटिया में लिटाते, औषधि देते, बड़ा ठीक करके उनको भेजते थे। ये दया है, ये साधु के जीवन की दया, साधना और दया। नारायण, कल मैं पुस्तक पढ़ रहा था उड़िया बाबा जी महाराज के बारे में, पावन प्रसंग में, तो उड़िया बाबा जी महाराज जी उन्होंने देखा दीनहीन गरीब लोग, और उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा पात्र अन्नपूर्णा से मांगूंगा कि लोगों को मैं खूब भोजन खिला सकूं। मैं लोग गरीब हैं, भूखे नंगे हैं, दया देखो देखो, और वो साधना करने के लिए जुट पड़े। इसलिए अन्नपूर्णा की सिद्धि बोलते हैं ना, बाबा को अन्नपूर्णा की सिद्धि थी, वो साधना की थी उन्होंने, और वो साधना अपने स्वयं खाने के लिए नहीं की थी, अन्नपूर्णा की जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी अपने को खाने के लिए नहीं। और सिद्धि से जो चीजें मिलती हैं ना वो सत्य बात तो यही है कि अपने लिए होती ही नहीं है, और अपने लिए जिस समय आप उपयोग करना शुरू कर देते हैं साधक का पतन हो जाता है। बाबा ने केवल दूसरे के लिए, दूसरे के लिए, वहां अपने जीवन में आसक्ति नहीं, दूसरे के लिए अन्नपूर्णा सिद्ध थी। कितनी साधना की बाबा ने, साधना का प्रारंभ तो बाबा का इसी से हुआ है, परोपकार की भावना से साधना का प्रारंभ हो गया, और उसके बाद उससे भी वैराग्य हो गया उनको। बाबा ने सोचा कि मैं कितने लोगों को खिला सकता हूं, पहले खिलाया और उसके बाद बोध हुआ, पता चला कि मैं कितने लोगों को खिला सकता हूं, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, लेकिन लाखों करोड़ों लोग हैं उनको कौन खिलाएगा। बाबा को लगा कि नहीं, इससे भी परे क्या चीज, वैराग्य।